नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर और सुखबीर सिंह संधू पंजाब कैडर के हैं। सुखबीर सिंह संधू ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। संधू को 2021 में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। तब द इंडियन एक्सप्रेस के दैनिक कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल में छपा था कि संधू को राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर उत्तराखंड भेजा गया है। उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने से पहले संधू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। NHAI का पद छोड़ उत्तराखंड पहुंचे संधू को कुछ ही घंटों के भीतर ही मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। इस मौके पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स के माध्यम से संधू को बधाई देते हुए NHAI के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल को बेस्ट एवर बताया था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार आपके अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल, खंडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जीपी, फरीदकोट से करमजीत अनमोल, भटिंडा से गुरमीत सिंह खादिया, संगरूर से गुरमीत सिंह मीत, पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह खुदिया, गुरमीत सिंह मीत और बलबीर सिंह पंजाब की भगवंत मान सरकार में मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में पंजाबी एक्टर करमजीत अनमोल को मौका दिया है। इसके अलावा मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में आने वाले गुरप्रीत सिंह जीपी को फतेहगढ़ साहिब से प्रत्याशी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अश्लील कमेंट परोसने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। इन OTT प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अश्लील, नग्न और काफ़ी हद तक पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के चलते बैन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के बयान के मुताबिक सरकार ने 18 OTT प्लेटफॉर्म और 19 वेबसाइट को बैन किया है। 10 ऐप्स को भी ब्लॉक किया गया है, जिनमें से 7 गूगल प्ले स्टोर और 3 एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। सरकार ने भारत में 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन कर दिया है और अब इन्हें देश में एक्सेस नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने OTT प्लेटफॉर्म्स को क्रिएटिव एक्सप्रेशन की आड़ में नग्नता, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने पर जोर दिया। सरकारी बयान के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों और मीडिया व मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों की सलाह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था। बता दें कि इन प्लेटफॉर्म पर IPC की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 67 और 67A व 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई भी की गई है। एक देश एक चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। 18,626 पेज की यह रिपोर्ट 8 खंडों में है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ये उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को लेकर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक ठोस मॉडल की सिफारिश की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही ये बात कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में परनीत कौर ही पटियाला से उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो जाने के बाद भी पटियाला सीट भाजपा के खाते में जाएगी। परनीत कौर की उम्र 79 वर्ष है, लेकिन उनके लिए भाजपा 75 से अधिक उम्र के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारने की अपनी नीति में भी ढील दे सकती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर भाजपा के साथ गठबंधन किया था। 2022 के विधानसभा में इस सीट से PLC के उम्मीदवार के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने PLC का भाजपा में विलय कर दिया। ऐसे में BJP अगर परनीत कौर को टिकट देती है तो ये तय है कि पटियाला सीट पर पहली बार भगवा झंडा फहर सकता है। पहले गठबंधन के दौरान इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल ही चुनाव लड़ता था। परनीत कौर कांग्रेस से 1999, 2004 व 2009 का लोकसभा चुनाव लगातार जीती थी। 2014 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर गांधी से वो चुनाव हार गईं, लेकिन 2019 में उन्होंने पुनः जीत हासिल की थी। CAA की अधिसूचना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, CAA से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। CAA सिर्फ और सिर्फ तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थी को नागरिकता देने का कानून है। अमित शाह बोले, PM मोदी की हर गारंटी पूरी होती। विपक्ष के इस आरोप पर भाजपा CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। PM मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।